इससे पूर्व पाठ में क्या था कि मीमांसक लोग जो है ना लक्षण की अपनी ओर से व्याख्या करके अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन व्याकरणों ने चलने नहीं दिया। अब मीमांसक ने क्या किया कि व्याकरणों की जो व्याख्या है लक्षण की, उस व्याख्या पर ही चोट कर रहे हैं कि आप जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं उसमें दोष है, तो वही दोष बताया जाएगा यहाँ पर और उसका समाधान किया जाएगा। कहते हैं कि ननु अस्येव धातु के, ताकि क्रियावाचक को ही अगर आप धातु मानेंगे, क्रिया का अर्थ व्याकरण क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार वाचक को ही आप अगर धातु मानेंगे तो क्या होगा, कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसका अर्थ केवल फल होता है, व्यापार नहीं होता है। ये मीमांसकों का मानना है। तो मीमांसकों का कहना है कि कुछ धातुएं हैं जैसे अस धातु है, भू धातु है, और विद धातु है, मृतु धातु है, इन सब धातुओं में जैसे अस्ति, विद्यते, वर्तते, तो ये सब जो धातुएं हैं इसमें केवल फल अर्थ होता है, व्यापार अर्थ नहीं होता है। तो अगर आप कहते हैं कि व्यापार वाचक की धातु संज्ञा होगी, क्रियावाचक की धातु संज्ञा होगी, तो फिर अस धातु, मृतु धातु, विद धातु, इन सबों की धातु संज्ञा होगी, हो ही नहीं पाएगी, फिर आप क्या करें, कैसे करें। इसलिए ये लक्षण भी सही आपका नहीं है कि क्रियावाचकत्व सति घनपठित्व धातुत्व, वही कहा। आप देखिए पंक्ति को, ननु अस्येव धातुत्व, अस्येव माने व्यापार वाचकस्येव धातुत्व, व्यापार वाचक को ही अगर धातुत्व मानेंगे व्यापार वाचक में, तो अस्ति इत्यादो, अस्ति इत्यादि, इत्यादि माने मृतु वर्तने धातु, विद सत्तायाम धातु, इन सब धातुओं में क्रिया प्रतीति अभावात्, क्रिया प्रतीति का अभाव है, माने व्यापार की प्रतीति उसमें नहीं होती है, केवल फल की ही प्रतीति होती है, तो अस्त्यादि नाम तत् अवाचका नाम, अस्ति आदि जो धातु है वह अवाचक है, माने व्यापार का अवाचक है, व्यापार का बोधक नहीं है, तो फिर अधातुत्व प्रसंग, फिर उसमें जो है अधातुत्व का प्रसंग होगा, माने उसकी धातु संज्ञा नहीं हो पाएगी। ऐसा जो है मीमांसकों ने जब दोष दिया, तो उसका समाधान करने के लिए बारहवीं कारिका को दीक्षित जी प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं अस्त्यादापि धर्म्यं से भाव्य अस्तेर ही भावना अन्यत्राशेष भावातु सा तथा न प्रकाशते। एक लाइन में आप पहले ये समझ लीजिए कि ये जो तीनों धातुओं का उल्लेख हुआ था पहले, अस धातु, एद धातु, नहीं अस धातु, मृतु धातु और विद धातु, इन सब धातुओं में ना मीमांसक भले माने कि केवल फल अर्थ होता है, व्यापार अर्थ नहीं होता है, लेकिन व्याकरणों के सिद्धांत में जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुओं में फल और व्यापार दोनों ही अर्थ होते हैं, इसलिए वो व्यापार वाचक हैं, और व्यापार वाचक होने के कारण उसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। ये मैंने समाधान आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि ये सब केवल फल मात्र वाची हैं, ये सब व्यापार वाची भी हैं। इसी बात को अब कारिका के द्वारा हम समझेंगे। कहते हैं कि अस्त्यादाव अपि, माने अस्ति आदो अपि, अस्ति और आदि से विद्यते को ले लीजिए, वर्तते को ले लीजिए, कि इन सबों में भी धर्मी अंग से, यहाँ पर धर्मी जो है ना उसका अर्थ करिए कर्ता। कर्ता कौन होता है, तो कर्ता जो है ना वह व्यापाराश्रय होता है, तो धर्मी का अर्थ हो गया व्यापाराश्रय। उसका जो अंश है, व्यापार आश्रय में दो शब्द है, एक है व्यापार, दूसरा है आश्रय, तो धर्मी कौन हुआ, व्यापार आश्रय, उसका अंश व्यापार होगा ना, आश्रय भी अंश है और व्यापार भी अंश है, तो अंश माने अवयव, भाग, हिस्सा, तो दो भागों में व्यापार आश्रय शब्द है, तो धर्मी जो है व्यापार आश्रय, उसका जो अंश है कौन, व्यापार, उस व्यापार अर्थ में भाव्ये, भाव्ये का अर्थ करना है फले, भाव्य का अर्थ होता है उत्पाद्य, माने जिसका जिसको उत्पन्न किया जाए उसको कहेंगे उत्पाद्य अथवा भाव्य, तो भाव्य हो गया फल। अब ऐसा है ना कि कर्ता क्या करता है, कर्ता जो है क्रिया के द्वारा फल को उत्पन्न करता है, क्या करता है, कर्ता क्रिया के द्वारा फल को उत्पन्न करता है। कर्ता कौन है, व्यापाराश्रय है। अब इसको व्यापाराश्रय शब्द में मिला करके देख लीजिए कि व्यापाराश्रय जो है कर्ता, वह व्यापार के द्वारा फल को उत्पन्न करता है, ठीक है, फिर से बोलूं, व्यापाराश्रय व्यापार के द्वारा फल को उत्पन्न करता है। यहाँ पर व्यापार आश्रय जो करता है उसके लिए धर्मी शब्द का प्रयोग हुआ, धर्मी अंशे। ये अंश शब्द जो है, या इस अंश को कोई कोई व्यापार अर्थ कर लेते हैं और कोई कोई जो है ना फल अर्थ करते हैं, दोनों से तरह से जो है इसका अन्वय बैठ सकता है। तो चलिए हम अंश का अर्थ फल कर लेते हैं। तो धर्मी जो व्यापार आश्रय है उस वह अंश जो भाव्य है, माने फल अंश में क्या होता है कि भावना अस्त्येव ही भावना, माने फल को भाव्य बनाने के लिए, फल को उत्पाद्य बनाने के लिए भावना करता ही करता है, व्यापार करता ही करता है। तात्पर्य ये निकला कि अस्ति आदि में भी जो है भावना रहती ही है, अगर भावना नहीं रहेगी तो धर्मी के द्वारा भाव्य की उत्पत्ति नहीं होगी, कर्ता के द्वारा फल की उत्पत्ति नहीं होगी, जबकि फल की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर इन्होंने पहली पंक्ति में तो ये कहा कि अस्ति आदि स्थल में भी धर्मी के द्वारा जो भाव्य फल होता है, उत्पाद्य फल होता है, उसमें भावना रहती ही है, क्योंकि भावना नहीं रहेगी, व्यापार नहीं रहेगा तो फल जो है भाव्य बनेगा ही नहीं। इससे ये सिद्ध किया कि अस्ति आदि में भी जो है भावना अर्थ होता है, व्यापार अर्थ होता है, केवल फल अर्थ नहीं होता। अब इस पर जो है ना अटैक ये किया जाता है, काउंटर अटैक, कि अगर मान लीजिए कि भावना भी है, माने व्यापार भी है और फल भी है अस्ति आदि में, तो वो फिर दिखता क्यों नहीं है, वह समझ में क्यों नहीं आता है। समझ में तो केवल फल ही आता है। जब कहते हैं अस्ति तो क्या अर्थ समझ में आता है, केवल सत्ता अर्थ समझ में आता है। सत्ता क्या है, फल है। तो व्यापार भी समझ में आना चाहिए ना, वो क्यों नहीं आता है? उसका जवाब दिया सेकेंड लाइन में, ताकि अन्यत्र अशेष भावातु सा तथा न प्रकाशते, ताकि वो रहता तो है व्यापार अर्थ, लेकिन न प्रकाशते, वह प्रकाशित नहीं होता है, वह मतलब क्लियर कट जो है दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह व्यापार अर्थ उसमें रहता जरूर है। फिर सवाल आया कि जब रहता है तो प्रकाशित क्यों नहीं होता है, समझ में क्यों नहीं आता है? उसका जवाब दिया अशेष भावात, कि अशेष भाव होने के कारण वह अलग से दिखाई नहीं देता। अलग से मतलब फल से अलग व्यापार दिखाई नहीं देता, फल में मिला जुला ही व्यापार जो है दिखाई देता है। ये अशेष भाव क्या है, जो कि कारण है कि अशेष भाव के कारण वह व्यापार प्रकाशित नहीं होता है, तो वो अशेष भाव का अर्थ आगे बताया जाएगा, भूषणकार स्वयं बताएंगे। ऐसे मैं बता देता हूँ, अशेष भाव माने सामानाधिकरण्य, तो सामानाधिकरण्य के कारण वह अलग से नहीं प्रकाशित होता है, अलग से नहीं दिखता है। फिर आएगा कि सामानाधिकरण्य क्या हुआ, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक ही अधिकरण में अगर फल भी रहता है और व्यापार भी रहता है तो वहाँ पर फल व्यापार का सामानाधिकरण्य माना जाता है। समान अधिकरण में रहने वाला कौन हुआ, फल और व्यापार, और समानाधिकरण जो फल व्यापार है उसमें रहने वाला जो धर्म है वही हुआ सामानाधिकरण्य। तो एक अधिकरण में रहने के कारण ये अर्थ हुआ अशेष भावात का, अशेष भाव के कारण फल से अतिरिक्त व्यापार प्रकाशित नहीं होता है, माने ज्ञात नहीं होता है, तो अशेष भाव का अर्थ हो गया कि एक अधिकरण में रहने के कारण। इसको आप शास्त्र की भाषा में कहें तो सामानाधिकरण्य के कारण वह फल से अलग नहीं दिखाई देता है। क्लियर। अब जो है इतना समझ जाने के बाद फिर हम भूषण कार की व्याख्या देखते हैं। तो कहते हैं अस्त्यादो असभुवि इत्यादो, ताकि असभुवि इत्यादि धातु में धर्म्यंग से का धर्मी भागे, धर्मी कौन है, कर्ता। मैंने कहा था ना व्यापार से धर्मी है यहाँ पर, तो धर्म्यंग से का धर्मी का अंग से का अर्थ भाग किया इन्होंने, कि धर्मी के भाग में भाव्य का अर्थ किया भाव्यत्वेन विवक्षिते, कि भाव्य के रूप में जो विवक्षित है, भाव्य माने उत्पाद्य। मैंने बताया था कि उत्पाद्य कौन है, फल है, तो उत्पाद्य फल के रूप में जो विवक्षित है वहाँ पर अस्ति एव माने प्रतीयते एव, कौन, भावना जो है उसकी प्रतीति होती ही है, भावना का ज्ञान होता ही है। अयम अर्थ, कहा कि इसका अर्थ ये समझना चाहिए क्या, कि सह, अब इसको ना ये व्यवहार के द्वारा सिद्ध करते हैं कि कैसे जो है व्यापार की प्रतीति होती है अस्ति आदि स्थल में, तो उसको बताते हैं कि स ततो गतो नवा इति प्रश्ने, किसी ने किसी को पूछा कि सह ततः गतो नवा, वह वहां से गया कि नहीं गया। अब थोड़ा गौर करिए, इस प्रश्न में व्यापार के बारे में पूछा जा रहा है, फल के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। सह ततो गतो नवा, वह वहां से गया कि नहीं गया, ऐसा प्रश्न क्या व्यापार के बारे में? आप जानते हैं ना, जैसा प्रश्न होता है वैसा ही उत्तर दिया जाता है। अगर व्यापार के बारे में प्रश्न है तो उत्तर भी ऐसा दिया जाएगा ना जिससे कि व्यापार का उत्तर में निकले। तो वही कह रहे हैं कि स ततो गतो नवा, ऐसा व्यापार संबंधी प्रश्न होता है और उस पर जवाब मिलता है कि महता यत्ने न अस्ति, कि बहुत ही कठिनाई से बहुत ही यत्न करने पर जो है अस्ति माने वह है। तो अस्ति के द्वारा, अस्ति उत्तर के द्वारा यहाँ पर व्यापार को ही बताया गया, क्योंकि पूछा गया था सह ततो गतो नवा। अब मान लीजिए कोई जो है ना मेहमान आया घर में और वह आया और फिर जो है जाने के लिए तुरंत कहा कि अब मैं जाऊंगा। इस स्थिति को देख, और वो जो है ना घर वाले जो हैं उनको रोक रहे हैं, इस स्थिति को किसी ने देखा था तो वो कभी जो है उस घर के व्यक्ति को पूछा कि सह ततो गतो नवा, कि वो मेहमान जो आए थे वो गए कि नहीं गए? इस पर उसने घर वाले ने जवाब दिया कि महता यत्ने न अस्ति, अरे बहुत कठिनाई से बहुत मेहनत करके जो है ना मान सम्मान करके जो है उनको समझा बुझा करके वो अभी हैं अस्ति। तो यहाँ पर अस्ति में जो है इस तरह का जब व्यवहार वाक्य होता है सह ततो गतो नवा और उसका उत्तर दिया जाता है महता यत्ने न अस्ति, तो यहाँ पर व्यापार अर्थ की प्रतीति तो होती ही होती है। इस तरह से अस भूभि धातु जो है, अस धातु जो है उसका अर्थ क्या होगा? सत्तानुकूल व्यापार, केवल सत्ता फल नहीं, सत्ता रूप जो फल है उसके अनुकूल जो व्यापार है, यही अर्थ होता है अस धातु का, जो अर्थ ऐसी सिचुएशन में सामने दिखती है। और बाकी सामान्य सिचुएशन में जो है वह व्यापार फल में ही जो है जुड़ा हुआ दिखता है, अलग से नहीं महसूस होता है। अब पंक्ति देखिए, सह ततो गतो नवा इति प्रश्ने, ऐसा प्रश्न होने पर महता यत्नेन अस्ति इति प्रयोगे, महता यत्नेन अस्ति ऐसा जब इस प्रयोग के द्वारा जब उत्तर दिया जाता है वहाँ पर सत्तारूप फलानुकूला भावना प्रतीयते एव, वहाँ पर जो है सत्तानुकूल व्यापार की प्रतीति होती ही है। उत्पत्त्यादि बोधने तु सुतराम, और जहाँ पर उत्पत्ति आदि अर्थ बताना हो कि इसकी उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई, वहाँ पर कहेंगे कि अस्ति, तो वहाँ पर जो है ना व्यापार क्लियर कट जो है वहाँ पर दिखाई देता है। उत्पत्त्यादि बोधने तु सुतराम, इसका मतलब हुआ कि अस धातु का दोनों अर्थ होगा, सत्तानुकूल व्यापार भी होगा और उत्पत्त्यनुकूल व्यापार भी होगा। तो जब उत्पत्त्यनुकूल व्यापार अर्थ में अस्ति का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर व्यापार अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, और जब सत्तानुकूल व्यापार अर्थ में अस्ति का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जैसे अंधेरे में कुछ दिखता है उस तरह से व्यापार अर्थ दिखता है, मगर दिखता जरूर है। तो अगर व्यापार अर्थ दिख गया तो क्रियावाचकत्व आ जाने से उसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। आपने जो दोष दिया था कि अस धातु में, वृत्त धातु में, विद धातु में व्यापार वाचकत्व के अभाव में धातु संज्ञा नहीं होगी, वह दोष सही नहीं है। अब रामायण का उदाहरण देकर के भी जो है सिद्ध करते हैं कि व्यापार अर्थ प्रतीत होता है अस धातु से। कौन सी पंक्ति है? रोहितो लोहितात आसित धुंधुस्तस्य सुतः अभवत, माने लोहित नाम के व्यक्ति से, रोहित व्यक्ति जो है वह आसित जन्म लिया, धुंधुस्तस्य सुतः अभवत, और धुंधु जो है उसका सुत हुआ माने उसका बेटा हुआ। यहाँ पर जो आसित है और अभवत है इन दोनों में व्यापार अर्थ जो है साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ पर जो अस धातु और भू धातु है उसका अर्थ है उत्पत्ति अनुकूल व्यापार। तो रोहितो लोहितात आसित का अर्थ क्या निकलेगा? यही निकलेगा ना कि रोहित जो है लोहित से उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हो गया फल, हुआ हो गया व्यापार। तो इस तरह से व्यापार अर्थ की प्रतीत होती है इत्यादि दर्शनार्थ ऐसे जो है ग्रंथों में दिखाई देता है, पुराणों में भी दिखाई देता है। किंच अत्र भावना विरहे लदादि व्यवस्था न स्यात्, कहा कि अगर आप भावना का विरह मानेंगे, माने विरह माने अभाव, भावना माने व्यापार, माने व्यापार अभाव मानेंगे अस धातु में, तो फिर यहाँ पर लदादि व्यवस्था न स्यात्, क्योंकि लट आदि लकार जो की जो व्यवस्था है वह क्रियावाचकत्व रहने पर ही होती है ना, क्योंकि लदादि किससे आती है? धातु से आती है और धातु संज्ञा किसकी होती है? क्रियावाचक में व्यापार वाचक से होती है। तो अगर भावना का विरह मानेंगे तो वह धातु नहीं होगी, और धातु नहीं होगी तो लदादि व्यवस्था भी नहीं होगी, जबकि लदादि व्यवस्था तो होती है, अस्ति आसीत अभवत ये सब प्रयोग तो होता है। तस्या एवं वर्तमानत्वादि विवक्षायाम तद विधानात्, ताकि लट वर्तमान लट सूत्र से लट होता है। वो क्या कहता है कि वर्तमान में लट हो, वर्तमान किसके वर्तमान में? तो व्यापार के वर्तमान में, क्रिया के वर्तमान में लट हो। और जब आप क्रिया अर्थ मानेंगे ही नहीं तो क्रिया का वर्तमान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो लट आदि की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आगे कहते हैं क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका, भेदिका माने विशेषण। कहा कि दो चीजें हैं, एक है काल एक है संख्या। तो काल जो है वह क्रिया का भेद करता है, क्योंकि वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यत कालिक क्रिया, क्रिया तो एक ही है लेकिन अलग अलग क्रिया को दिखाना जो है वही है क्रिया भेद। तो अलग अलग क्रिया को दिखाने के लिए काल का प्रयोग किया जाता है, वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यत कालिक। और संख्या सर्वस्य भेदिका, काल जो है केवल क्रिया की भेदक होती है, माने क्रिया का विशेषण होता है, क्रिया का भेद बताता है, लेकिन संख्या जो है सर्वस्य भेदिका, संख्या जो है ना सबका भेदक है, माने सब में भेद दिखाता है, चाहे क्रिया हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, चाहे काल भी क्यों न हो, काल का भी जो संख्या भेद कराता है, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा ये कहते हैं ना, तो घंटा क्या है, काल है, उसका भी भेदक है, काल का भेद भी जो है संख्या बताती है। इति वाक्यपदीयात, इस तरह से वाक्यपदीय में बताया गया कि काल जो है क्रिया का भेदक है और संख्या जो है वह सभी का भेदक है, माने विशेष क्रिया का बोध काल कराता है और विशेष वस्तु का बोध संख्या कराता है। ननु एवं अस्ति इत्यत्र स्पष्टम कुतो न बुध्यते, कहा कि ये अस्ति जब हम सीधे प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से व्यापार जो है कथम न बुध्यते, व्यापार का ज्ञान क्यों नहीं होता है? तो उसका जवाब दिया कारिका में अन्यत्र अशेष भावातु, ये मैं पहले बता चुका हूँ, उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है, अशेष भावात उसका बराबर देकर के अर्थ बताया, भावनाया फल समानाधिकरण वात, भावना माने व्यापार जो है चूंकि फल समानाधिकरण होता है वहाँ, माने फल के अधिकरण में व्यापार बैठा रहता है, अलग अधिकरण में नहीं व्यापार बैठा रहता है, फल समानाधिकरण व्यापार के होने से वह अस्ति जब प्रयोग करते हैं उसमें स्पष्टतः दिखाई नहीं देता है। तथा च भावनाया फल समानाधिकरण्यम तत् अस्पष्टत्व दोष, ताकि भावना जो है वह जो उसमें जो अस्पष्टता रहती है उसमें भावना का न होना कारण नहीं है, बल्कि भावना का फल समानाधिकरण्य होना ही जो है कारण है, इसी कारण से वह स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है। आज का पाठ यहीं रखते हैं।